नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली जीनोम संवर्धित चावल की दो किस्में जारी की, पैदावार बढ़ाने और लागत कम करने में सहायक होंगी। पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स मुंबई में संपन्न, वेव्स बाजार में 1,300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया, कहा देश में खेल संस्कृति का उदय इसकी सॉफ्ट पावर को दिखाएगा। एयर इंडिया ने इसराइल में तेल अवीव के हवाई अड्डे के पास हौसी विद्रोहियों के मिसाइल हमले के बाद मंगलवार तक वहां की सभी उड़ानें निलंबित की। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा कराची राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली दो किस्में जारी की। उन्होंने परियोजना से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये शोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये दोनों किस्में न केवल किसानों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी फायदेमंद हैं।
जो दो हमारी किस्में हैं, उनमें से एक कमला DRR 100 धान की एक किस्म, और ये मूल किस्म जैसा बताया गया है सांबा महसूरी, अब उसकी तुलना में अधिक उपज 25 से लेकर 30%, और ये 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाएगी। मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह से पोषण सुरक्षा देनी है, खाद्य सुरक्षा देनी है, तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये किस्में आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए विकसित की गई है।
पहली धान की किस्म DRR 100 कमला है, जो सांबा महेश्वरी किस्म से बनाई गई है। ये किस्म 15 से 20 दिन पहले पक जाती है और 25% ज्यादा उपज देती है। दूसरी किस्म का नाम पूसा DST 1 है, जो खारे और क्षारीय मिट्टी में भी अच्छी उपज देती है और ऐसी स्थिति में 30% ज्यादा उत्पादन करती है। अगर इन दोनों किस्मों की खेती करीब 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाए तो देश में अतिरिक्त 45 लाख टन धान का उत्पादन हो सकता है। ICAR ने कहा है कि ये दोनों किस्में जलवायु के अनुकूल और अधिक उत्पादन देने वाली हैं। ये देश में दूसरी हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाएंगी। अक्षित वेदियान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब खबरें वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स से। भारत का पहला वेव्स सम्मेलन आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हो गया। बृहस्पतिवार को सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं मुंबई में मौजूद अपनी संवाददाता प्रार्थना के पास। प्रार्थना, आज संपन्न हुए 4 दिन के इस सम्मेलन की कुल मिलाकर उपलब्धियों की बात करें तो क्या रही उपलब्धियां?
जी हाँ विशाल, वेव्स 2025 पिछले 4 दिनों में यहाँ मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। इस बार की थीम थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, और सभी हितधारकों ने एक ही बात दोहराई कि भारत की कहानियों को पूरी दुनिया तक ले जाना चाहिए और भारत को एक ग्लोबल शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा मिलना चाहिए। सम्मेलन के अंतर्गत ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आयोजन किया गया था, जिसमें 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग के बढ़ने पर जोर दिया। व्यापार की दृष्टि से देखें तो इस बार का वेव्स बाजार काफी उत्साहवर्धक रहा। यहां फिल्में, म्यूजिक, रेडियो, वीएफएक्स और एनिमेशन सेक्टर में 1300 करोड़ से ज्यादा का व्यापार दर्ज हुआ। यहां बायर सेलर मार्केट भी आयोजित किया गया था जिसमें 3000 से अधिक B2B मीटिंग्स हुई। वेव सम्मेलन में मुख्यतः मीडिया के वैश्वीकरण, स्टार्टअप, पायरेसी, कंटेंट के फ्यूचर, AI और मेटावर्स जैसे मुद्दों पर सत्र आयोजित किए गए। साथ ही हमारी विरासत को सहेजने पर भी चर्चा हुई। भारतीय फिल्मों में शास्त्रीय और लोक संगीत, पुराने क्लासिक फिल्मों के रेस्टोरेशन पर चर्चा हुई। और हाँ, विशाल वेव्स 2025 में 10वें नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स भी दिए गए। इसके अलावा मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी अहम रिपोर्ट और वाइट पेपर भी जारी किए गए। विशाल,
धन्यवाद प्रार्थना इस विस्तृत जानकारी के लिए। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि वेव्स में शामिल प्रत्येक क्रिएटर बेहतर कलाकार बना है। मुंबई में वेव सम्मेलन के सांस्कृतिक सत्र में श्री जाजू ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में शामिल हुए संगीतकारों ने अपने प्रदर्शन से देश के सार को दर्शाया है। श्री जाजू ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि वेव्स सम्मेलन निवेश, व्यापार, कला और संस्कृति के लिए एक अविश्वसनीय मंच रहा है।
अपने आप में एक अविस्मरणीय रहा है। न केवल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बहुत जोरदार था, साथ ही साथ बिजनेस भी बहुत हुआ है। इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वेव्स बाजार में खरीद फरोख्त हुई है, वर्ल्ड की टॉप मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज यहाँ पर शामिल रहीं, कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छे रहे और अपने आप में एक पीपल्स वेव्स बन के निकल के आया है ये पहला एडिशन।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोगों को संस्कृत भाषा सीखने की आवश्यकता है क्योंकि देश का संपूर्ण ज्ञान संस्कृत भाषा में है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। श्री शाह नई दिल्ली में संस्कृत भारती के 1008 संस्कृत भाषण शिविरों के समापन समारोह में बोल रहे थे।
संस्कृत एक प्रकार से भारत की आस्था है, हमारी परंपरा है, ये सत्य है, नित्य है, सनातन। इसके साथ साथ ज्ञान और ज्ञान की ज्योति दोनों एक प्रकार से संस्कृत में ही समाहित है।
श्री शाह ने कहा कि संस्कृत अधिकांश भाषाओं की जननी है और सरकार देश में इसे बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इन शिविरों में 25,000 लोग शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करना और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना है। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में संस्कृति जागरण महोत्सव में ये बात कही।
साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे।
रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया अब भारत को पहचानती है और वैश्विक मंच पर उसकी बातों को सुना जाता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति में ये मुलाकात महत्वपूर्ण है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पलक शेर मसीह और सूरज मसीह पर कथित रूप से अमृतसर में सेना छावनी और एयरबेस के फोटो और संवेदनशील जानकारी की जासूसी का आरोप है। आरंभिक जांच में उनका संबंध पाकिस्तानी जासूसों से होने का पता चला है। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में सेना के वाहन के सड़क से फिसलकर 700 फुट गहरी खाई में गिरने से सेना के 3 जवानों की मृत्यु हो गई। इनकी पहचान सिपाही अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश में खेलों की संस्कृति विकसित की है और खेलो इंडिया इसका उदाहरण है।
एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं और ये युवा खेल प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा और अपनी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा।
आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए, स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है।
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि बिहार खेलों के क्षेत्र में भी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है।
6000 से अधिक हमारे एथलीट पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, 10000 से अधिक स्पोर्ट्स सेक्टर के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज जब यूथ गेम्स का प्रारंभ हो रहा है, उस अवसर पर बिहार इस इतना बड़ा कार्यक्रम, यहाँ इतना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बिहार में करवा रहे हैं, ये स्वयं प्रतिबिंबित है कि बिहार स्पोर्ट्स सेक्टर में भी अपना स्थान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दर्ज करते जा रहे हैं।
आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 4 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में और राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। कोलकाता के 207 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इसराइल ने कहा है कि यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल आज सुबह बिन गोरियन हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल के निकट गिरी। इस विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए। हौसी प्रवक्ता ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसराइली वायुसेना घटना की जांच कर रही है। इस बीच हमले के बाद एयर इंडिया ने घोषणा की है कि तल अवीव से आने जाने वाली उसकी सभी उड़ानें मंगलवार तक निलंबित रहेंगी। उसने कहा है कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। मंगलवार तक यात्रियों को टिकट पुनर्निर्धारण पर एकमुश्त छूट या रद्द करने पर पूर्ण धन वापसी की पेशकश की जाएगी। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के कलात जिले के मोंगोचर इलाके में एक बड़ा हमला कर क्वेटा कराची राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 अवरुद्ध कर दिया है। BLA ने कई सरकारी इमारतों में आग भी लगा दी है। BLA ने इस छापे को अपनी आजादी के संघर्ष का हिस्सा बताया है। बाद में सुरक्षा बलों ने यातायात बहाल किया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस बीच बलूच नेशनल मूवमेंट BNM ने डेनमार्क के शहर उट्रेक्ट में एक विरोध प्रदर्शन और एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें नीदरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूच लोगों के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए गए गंभीर अत्याचारों की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया गया। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल और अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे अत्यधिक गर्मी के दौरान सुरक्षित रहने विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जिनामणि और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस परिचर्चा में भाग लेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को मंदिर के कपाट खुलने के बाद सिर्फ 2 दिनों में 55,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ का दर्शन कर चुके हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली जीनोम संवर्धित चावल की 2 किस्में जारी की। पैदावार बढ़ाने और लागत कम करने में सहायक होंगी। पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स मुंबई में संपन्न। वेव्स बाजार में 1,300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। एयर इंडिया ने इसराइल में तल अवीव हवाई अड्डे के पास हौसी विद्रोहियों के मिसाइल हमले के बाद मंगलवार तक वहां की सभी उड़ानें निलंबित की और पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा कराची राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।